था कि ज्ञानी का जन्म होता है तब सामान्य स्वभाव का पड़खा बाहर आता है। इसका क्या प्रयोजन है और क्या भाव है, कृपया समझाएं।
अनंत अनंत काल के आत्मा ने अपना शुद्धात्मा सामान्य परखा है जो नित्य निरावरण अने परिपूर्ण परमात्म पदार्थ के अंदर विराजमान है। सामान्य परखा टंकोत्कीर्ण जिसका लक्षण परम पारिणामिक स्वभाव भाव है, वो नित्य ध्रुव है, शाश्वत है। आत्मा वो सामान्य परखा आत्मा ने जाना नहीं आज तक। वो विशेष परखा यानी पर्याय, पर्याय में चौथुर स्थान, मार्गना स्थान, जीव समाज, राग द्वेष मोह हर्ष शोक आदि अनेक प्रकार ना जो परिणाम होता है, इंद्रिय ज्ञान प्रकट होता है, इसे विशेष को जाना, मगर सामान्य को जाना नहीं, सचमुच सुना भी नहीं, और सुनाने वाले भी कभी कभी उसका जन्म होता है। यानी जब ज्ञानी का जन्म होता है और ज्ञानी मिलते हैं तो विशेष का परखा का ज्ञान कराते कराते उसका लक्ष्य छोड़ दे और उससे भिन्न भगवान आत्मा उसका लक्ष्य कर, वो है अनंत गुणात्मक पदार्थ विद्यमान है, परिणाम है तो द्रव्य होना चाहिए, इतना तो अनुमान में आता है। सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य है ही, सूर्य का प्रकाश सूर्य के बिना उसका विशेष सामान्य के बिना होता नहीं है। तो वो विशेष को सब जानते हैं, कर्ता भोक्ता जानते हैं, मगर आत्मा कारक अवेदक है, केवल ज्ञायक ज्ञाता है, शुद्ध है, परिपूर्ण है। वो परखा जो सामान्य परखा उसका परिचय नहीं, उसकी बातें सुनी नहीं है। तो ये जब ज्ञानी का जन्म होता है तो एक परखा का तो परिचय है सबको, काम भोग बंधन की कथा, ये करना नहीं भोगना नहीं, करता है नहीं भोगता है आत्मा, ऐसी बात तो सुनी और अनुभव में भी वो बात आई, मगर वो परिणाम से भिन्न पृथक आत्मा अंदर में अनुगुणात्मक विराजमान है। ऐसी बात बाहर कभी आती है कि जब ज्ञानी का जन्म होता है तब, और ज्ञानी ने सामान्य परखा अनुभव में ले लिया, सामान्य का श्रद्धान्य विशेष का ज्ञान, सामान्य का श्रद्धान और विशेष का ज्ञान, ज्ञानी को दो है, सामान्य का अवलंबन अने विशेष को जानने लायक है बस इतना ही। तो उसमें अंदर प्रयोजन ये है, प्रयोजन अभी कि सामान्य स्वभाव का लक्ष्य करने से जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है, विशेष का लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होता है। सामान्य शुद्धम विशेष अशुद्धम, सामान्य स्वभाव शुद्ध है, शुद्ध को जानता है तो सौमर्य जरा शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाता है, विशेष का लक्ष्य से अशुद्ध परिणाम राग आदि प्रकट हो जाता है। तो विशेष का लक्ष्य छोड़ दे, विशेष को छोड़ दे नहीं, विशेष का लक्ष्य छोड़ दे यानी विशेष में आत्मबुद्धि छोड़ दे, उसमें अहम बुद्धि छोड़ दे, देह नहीं छोड़ना है, देह में आत्मबुद्धि छूटता है, कर्म नहीं छूटता है, कर्म में आत्मबुद्धि छूटती है, राग नहीं छूटता है, राग में अहम बुद्धि छूट जाती है, और स्वभाव में अहम बुद्धि आती है तो अनुभव होता है। वो सामान्य परखा का प्रयोजन आश्रयभूत पदार्थ है, उसका आश्रय करो, उसका लक्ष्य करो, ये प्रयोजन है। दूसरा प्रश्न,
उपशम और क्षयोपशम सम्यक होता है इस काल में,
बराबर
उपशम और क्षयोपशम सम्यक होता है, परंतु गाथा में तो क्षय की ध्वनि
खोल दो,
बराबर
कौन
बराबर,
इससे क्या अभिप्राय है?
इसका अभिप्राय यह है कि होता है तो पंचम काल में, पंचम काल है ना, तो इधर क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है, सम्य अकेला उपशम बाध्यक सूक्ष्म होता है, तो भी गाथा में क्षय की ध्वनि आया। तो हमेशा बात तो ऊंची करना चाहिए, बात तो ऊंची करना चाहिए, वहां तक न पहुंचे तो भी बात तो ऊंची करना चाहिए कि भाई मैं दुकान करूंगा, अने मैं तो 5-25 लाख रुपया कमाने वाला हूं, मैं बंगला लूंगा, मोटर भी लूंगा। वो तो दृष्टांत है, ऊंची बात करना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है ना, मेरा पहला नंबर आने वाला है, वो बोलता नहीं है कि 10वां नंबर आएगा, पहला नंबर बोलेगा ना, बाद में भले 11 नंबर आवे और बोलता है तो ऊंचाई रखना चाहिए। वचने कम दरिद्रता, वचने किम दरिद्रता, ये वचन वाणी तो ऊंची होनी चाहिए। तो ऐसा क्षय की ध्वनि आया है, तो क्षयी है, सूक्ष्म ऐसा है कि आगे बढ़कर क्षयी होने वाला है, ऐसी संधि वाला वाक्य है। ऐसी बात है कि ये पंचम काल में जिसको समय दर्शन होता है और ज्यादा टाइम टिकता है नहीं तो छूटता नहीं, परंपरा रक्षा ऐसी संधि है। इसलिए क्षय की ध्वनि ऊंची बात करते हैं, बस अरे क्षय हो नहीं तो कहीं नहीं, बक्षो उपशम तो हो, उपशम तो हो जाओ, ऐसा बोलो। दूसरा,
एक समय में राग और वितरागता दोनों भाव साथ में होते हैं।
हाँ, साथ में रहते हैं। क्या कहा?
रहते हैं,
होते हैं सर नहीं, रहते हैं,
रह सकते हैं,
रह सकते हैं। मिथ्या तो भी हो और सम्यक भी हो, ऐसा साथ नहीं है, समझे? साथ होते नहीं है, साथ रहते हैं। अनुभव के बाद आत्मा का अनुभव के पहले तो एक ही लराग था, वितराग भाव तो नहीं था। तो जब अनुभव हुआ तो अनुभव के काल में स्वरूपाचरण चारित्र अंशे स्थिरता वितरागता भाव प्रकट हो गया और साथ में अप्रत्याख्यान आदि का राग, अस्थिरता का राग, चारित्र का दोष भी साथ ही रहता है। समय एक, पर्याय एक, भाग दो है। समय एक, पर्याय एक, भाग दो। स्वसन्मुख वाली जो जितना भाग है उतने में तो वितरागता प्रकट हो गई और प्रसन्मुख वाली जो पर्याय है इतना उसमें तो राग है। क्योंकि जो वितराग भाव न हो अने एकीला राग हो तो मीठा दृष्टि, और एकीला वितराग भाव हो और राग साथ में न हो तो यथाख्या चरित्र होना चाहिए। ऐसा तो है
नहीं
मांगे, एक समय के पर्याय में मिश्र अवस्था रहती है। उत्पन्न तो नहीं होता है मगर उत्पन्न होने के बाद साथ में रहता है, साधक को ज्ञान चेतना और कर्म चेतना साथ ही रहती है, उसमें विरोध नहीं है, साथ ही रहने में विरोध नहीं है। जितना उस पर वितरागता इसका कारण से तो निद्रा होती है, तो जितना राग होता है इसका कारण से अल्पबल भी होता है, निद्रा भी होती है थोड़ी, बल भी थोड़ा होता है।
एक समय में दोनों कार्य
होता है? हाँ, एक समय में दो कार्य होता है। जो एक समय में एक ही कार्य हो, समझो अभी तर्क, एक ही समय में एक ही कार्य हो, साधक को बंदी हो, निद्रा न हो तो साधक नहीं रहता है, मोक्ष नहीं होता है। अच्छा, एक ही निद्रा हो जाए एक समय में सब अने नया बल हुए नहीं तो दो चार भाव भी कैसे हुए? देख, न्याय से सब ठीक होता है।
विभाव स्वभाव का
पहले में बात चली थी कि पर्याय में जो रागादि का विभाव होता है वो पर्याय का विभाव स्वभाव है। पर्याय का विभाव होने का उसका धर्म है, स्वभाव यानी धर्म, धर्म यानी समित्र नहीं, चारित्र नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं, धर्म याने या अपेक्षित धर्म है। धर्म याने जो राग को धारी रखते हैं पर्याय, उसका नाम उसका पर्याय का धर्म है। तो ये विभाव होने हुआ तो विभाव भी उसका पर्याय का स्वभाव है। विभाव द्रव्य का स्वभाव तो नहीं है, मगर जब मिथ्यात्व की पर्याय हुई तो विभाव हो गया। तो विभाव भी वो पर्याय का स्वभाव से ही है, पर्याय का स्वभाव है। राग होता है तो राग पर्याय का स्वभाव है। तत्समय की योग्यता, स्वभाव का अर्थ धर्म, स्वभाव का अर्थ धर्म, ऐसा धर्म रहता है पर्याय में, उसका नाम विभाव स्वभाव कहते हैं।
ज्ञानी पुण्य पाप की क्रिया का कर्ता होने से नहीं है,
ज्ञानी पुण्य पाप का परिणाम का कर्ता होता नहीं है, तो इसका रहस्य क्या है, इसका कारण क्या है कि कारण उसको भेद ज्ञान हो गया, पुण्य पाप से भिन्न शुद्धात्मा का अनुभव हो गया, तो पुण्य पाप का परिणाम के साथ एकत्व बुद्धि छूट गई। एकत्व बुद्धि छूट गई तो कर्ता बुद्धि भी गई, भोक्ता बुद्धि भी गई। तो वो एक ज्ञान रोहिरा की शक्ति है। पुण्य पाप का कर्ता भोक्ता क्यों नहीं है कि ज्ञान और वैराग की शक्ति प्रकट हो गई। ज्ञान क्या ने वैराग क्या, ज्ञान का नाम तो यह है कि पुण्य पाप से मेरा आत्मा जुदा है, वो निरंतर आत्मा को जानता है। पुण्य पाप से भिन्न मेरा आत्मा है, निरंतर ज्ञान में या एक जानने में आता है, इसका नाम ज्ञान है। और वैराग और पुण्य पाप का परिणाम मेरा नहीं है, उसकी निरंतर उपेक्षा रहती है, इसलिए उसका स्वामी नहीं बनता है, इसलिए कर्ता होता नहीं होता। हाँ, अस्थिरता से थोड़ा कर्तृत्व तो नहीं है, भुक्तृत्व तो नहीं है, तो थोड़ा दुख का वेदन भी ज्ञानी को जितना भाग में जितना उसमें राग होता है, तो व्यवहार में से भोक्ता कहा जाता है, मगर उन्हीं समय ही कर्ता नहीं के साथ अकर्ता नहीं है तो साक्षी भी है, इसलिए कर्ता बुद्धि नहीं होती है। और भोक्ता नहीं है तो भोक्ता है, उसलिए उस टाइम भी अभोक्ता नहीं भी है, तो अभोक्ता नहीं से ज्ञाता रहता है, इसके लिए एकत्व नहीं होता है। परिणाम जैसा है ऐसा ज्ञान देता है, एकत्व नहीं होता है, इसलिए पुण्य पाप का भोक्ता नहीं है, अज्ञानी पुण्य पाप का भोक्ता है, तो एकत्व कर लेता है।
दर्शन की प्राप्ति में ज्ञान तथा चारित्र की क्या उपयोगिता?
सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ज्ञान की उपयोगिता क्या और चारित्र की उपयोगिता क्या है, ऐसा प्रश्न आया। तो ज्ञान की उपयोगिता तो ऐसा है, जो ज्ञान आत्मा को जानता है जब, तब जाने वाला का श्रद्धान हो जाता है, ये ज्ञान की उपयोगिता है। ज्ञान जिसको जानता है उसका श्रद्धान बन जाता है। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान पर को जानता है तो पर मेरा है ऐसा विपरीत श्रद्धान हो जाता है। अभी ऐसा ज्ञान अंतर्मुख होकर इंद्रिय ज्ञान बाहर रह जाता है, अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मा से प्रकट होता है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान में जब आत्मा जानने में आता है तो जाना हुआ का श्रद्धान बन बन जाता है, प्रतीति आ जाती है, जाने लालू श्रद्धान हो जाता है। तो वो उसके अंदर चारित्र भी साथ में प्रकट होता है, तीन अंश एक साथ में प्रकट होता है। तीन अंश है मोक्ष मार्ग का, तीन अवयव है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तीन अंश वितराग भाव है, उसे राग से रहित है, निश्चय मोक्ष मार्ग व्यवहार से रहित है। जोड़े भले बाजू में हो तो देह भी है, कर्म भी है, राग भी है, उसको नड़ता नहीं है, वो उसमें रहता है। परिणाम वितरागी भाव उसमें रहता है, ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव में रहता है, वो बंटवारा हो गया खिलाफ। ऐसी स्थिति होती है तो ज्ञान का प्रयोजन आत्मा को जानकर श्रद्धान करना, इतना ज्ञान का प्रयोजन है। और उस टाइम जब ज्ञान भेद ज्ञान का विचार करता है तब चारित्र का क्या होती है बात कि एक गर्भित सुत्ता प्रकट हो जाता है। गर्भित सुत्ता का क्या अर्थ है कि भेद ज्ञान का बार बार विचार करना स्वभाव है, भेद ज्ञान का बार बार विचार करना स्वभाव है, अभेद का अनुभव करना हो तो निश्चय है, मगर निश्चय के पहले भेद ज्ञान का विचार व्यक्ति करता है तब गर्भित सुत्ता प्रकट होती है, यानी कसाई की मंदता उस टाइम हो जाती है आपो आप। कसाई की मंदता हुई माटे चारित्र हो गया ऐसा नहीं, पर पूर्व भूमिका में ऐसे बनाव बन जाता है, अंतर्मुख होता है तो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो जाता है। तो तीनों साथ में अभिनव भाव है, मगर सामान्य रीते चौथा पांचवा गुण स्थान वाले चारित्र अंश है, मगर चारित्र सचमुच तो छठा सातवा गुण स्थान मुनिराज को चारित्र कहा जाता है, सदुपयोग को चारित्र कहा जाता है।
सम्यक दर्शन तो प्रकट हुआ नहीं और व्रत भी पांचवें गुण स्थान में धारण करता है, कर सकता है, तो फिर धर्म की शुरुआत कैसे करें जीवन में?
देखो प्रश्न आया कि सम्यक दर्शन तो प्रकट हुआ नहीं और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ नहीं तो प्रकट होगा, अभी छोड़ो बात, अभी तो थोड़ा व्रत तप कर ले रहे तो सम्यक दर्शन तो बाद में हो जाएगा। ऐसा कोई करता है तो वो लाइन फर्क है। लाइन फर्क क्या है कि आश्रव का अभाव में क्रम पड़ता है, आश्रव मैंने विचार गौरव कथा योग चार भी आता है नाम, प्रमाद भेलो तो पांच नाम आता है, अभी टुका करो विचार अवरोध कटाय अने योग, उसका अभाव का क्रम है, वो क्रम भंग नहीं होता है, मिथ्या करे जावे अने अवरत छूट जावे ने व्रत हो जावे ऐसा आता
नहीं।
मिथ्या अवरत कषाय ने
योग,
मिथ्या तो श्रद्धा गुण की पर्याय का पाप है, अवरत चारित्र गुण की पर्याय का पाप है, समझे? अवरत यानी पाप का त्याग नहीं है, अभी तो पापी है, तो इसे क्रम भंग नहीं होता है, पहले सम्यक दर्शन होता है बाद में दशरथ बाद में यह महाव्रत होता है, ऐसा क्रम है। तो अभी कोई क्रम भंग करे तो इसमें दोष आ जाता है, दोष क्या जाता है कि व्रताति भाव कर्ता बुद्धि से करता है, तो एक तो वो बंध का कारण है और उसको चारित्र का कारण मान लिया, चारित्र का मल वेल है उसको चारित्र मान लिया, वो दोष है। हाँ ऐसा है कोई प्रैक्टिस करे तो कषाई की मंदता है ऐसा समझना चाहिए, व्रत नहीं है, व्रत नहीं है मगर कषाई की मंदता है, मेरे परिणाम में कषाई की मंदता है तो कोई दोष नहीं है, मगर उसको व्रत माने निद्रा का कारण माने तो दोष है, संवर निद्रा रूप नहीं है, वो उदय भाव है, उदय भाव बंध का कारण है। ज्ञानी का देशव्रत का परिणाम भी बंध का कारण, तो अज्ञानी देशव्रत की प्रैक्टिस कर तो बंध का कारण है ही, तो उसमें शंका नहीं है। उसका अर्थ ये नहीं है उधर नहीं लेना कि पाप करने की छूट है, पाप करने की तो अन्य मती पाप का उद्देश्य नहीं देवे, तो जैन दर्शन में कोई पुण्य छोड़ ने पाप करो ऐसा उद्देश्य तो ऊंचे ऊंचे जाने का उद्देश्य है। एक दफे ऐसा हुआ भैया राजकोट में गुरुदेव बनाया, तो एक मुंबई वाली पार्टी है छोटू भाई बिरानी, तो राजकोट का ही था है तो व्याख्यान में भी आवे रात्रि चर्चा में भी आवे, तो उसने एक प्रश्न किया हे गुरुदेव आप फरमाते हैं कि कि आत्मा का अनुभव से ही धर्म की शुरुआत होती है, आत्मा का अनुभव के बिना धर्म की शुरुआत होती
नहीं
है। तो मेरा एक प्रश्न है कि मैं अनुभव तक तो पहुंचता नहीं और पाप तो करना ही नहीं, और बाकी रहा पुण्य, तो पुण्य करना के नहीं करना? फिर से आप फरमाते हैं, यानी सर्वज्ञ भगवान फरमाते हैं, कुंकुंड आचार्य भगवान फरमाते हैं कि आत्मा का अनुभव से धर्म की शुरुआत होती है, अने लीनता से वृद्धि होती है, अने पूर्ण लीनता से मोक्ष होता है। तो ऐसी स्थिति तो हम कर सकते नहीं है, वहां तक हम पहुंचते नहीं है, हमारी पहुंच नहीं है अभी, समझे? और पाप तो करना नहीं, क्योंकि पाप करने से तो निगूत मन नरक मन धीरित मन धीरित में हमको जाना
नहीं है।
पाप करना नहीं है, अनुभव तक पहुंचते नहीं है, तो पुण्य करना के नहीं करना ऐसा प्रश्न नहीं कि पुण्य से धर्म होता है, ऐसा प्रश्न नहीं क्या? पुण्य करना कि पुण्य नहीं करना, अनुभव क्रिया पहुंच सकते नहीं है, पाप की क्रिया करनी नहीं है, तो बाकी तो रहे पुण्य, तो पुण्य करना कि नहीं करना, ऐसा प्रश्न आया। तो गुरुदेव ने क्या कहा प्रश्न के उत्तर? जभी जभी पुण्य का परिणाम आवे, पाप का परिणाम आवे, तभी तभी ऐसे विचारना कि पुण्य पाप का परिणाम जो आश्रय तत्व है उससे मेरा आत्मा भी ने, ऐसे बार बार विचार करना। पुण्य करना ऐसा ही नहीं कहा, नहीं करना भी
नहीं कहा।
पुण्य करना ऐसा भी नहीं कहा, नहीं करना ऐसा भी नहीं कहा। तो क्या कहा? कि जो आत्मा कर सकता है वो कहा, आत्मा ज्ञान करने वाला है। क्या कहा? भिन्न पाप से भिन्न मेरा आत्मा है, ओसा बार बार आत्मा का विचार करना, भेद ज्ञान का विचार करना। बोलो, कोई करना ये भी नहीं कहा, नहीं करना भी नहीं कहा, किसी बात बता बता
दिया। ऐसा रखा था, मुंह फाड़ के बैठा था कि अभी बोलेगा, गुरु को बांध दिया, गुरु को
गुरु को बांध दिया,
तब तो बोलेगा पुण्य करना।
उसके आशा ऐसी थी, मगर जब दूसरा आया,
दूसरा ही आवे
ने
भला हो ना
रहे। पाप पुण्य करना ऐसा उपदेश का अर्थ क्या है कि तुम दुखी हो, इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा आशीर्वाद ज्ञानी देते क्यों? सब शास्त्र की बात कहता हूं मैं कि पुण्य और पाप आश्रय तत्व है, उसमें आकुलता होती है, पुण्य भी आकुलता है, पाप भी, क्योंकि आश्रय तत्व का लक्षण ही दुख है। तो पुण्य करो तो इसका अर्थ कि तुम दुखी हो, ऐसा उपदेश ज्ञानी का होता
नहीं।
पाप से भिन्न तेरा आत्मा का ज्ञान कर ले।
भूल निकाल ले, सच्ची बात है।
ये अनादि का प्रश्न ऐसा होता है, आजकल का नहीं है, अनादि का ऐसा प्रश्न।
ज्ञानी को भी ऐसा ही जवाब देते हैं,
ऐसा ही जाप देते हैं, पुण्य पाप से भिन्न तारा आत्मा का ज्ञान कर, ज्ञान कर, ध्यान कर, उसकी श्रद्धान कर ले। सुखी होने का ही रास्ता बताता है, दुखी होने का रास्ता बता भी नहीं है। जो पुण्य का करो तो कल्याण होगा, एक ज्ञानी का उपदेश
नहीं है,
वाणी के द्वारा उसको ख्याल आ जाता है सुनने वालों को। क्योंकि पुण्य भी लोढ़ा नहीं बेड़ी, पाप लोढ़ा नहीं बेड़ी, पुण्य सोना नहीं बेड़ी, सोना की बेड़ी
बराबर है।
अच्छा, कोई तुमको लोढ़ा की बेड़ी से बांधना नहीं है, आज सोने की बेड़ी के बांधना है। भाई साहब, मेरे को
बांधना
नहीं है, अरे भाई सोना नहीं बेड़ी, बेड़ी पर बंदर रहने। पुण्य का परिणाम भी भावबंध, ने पाप का परिणाम भी भावबंध है, भावमोक्ष नहीं है।
भगवतराम जी ने छेड़ाड़े में लिखा है कि ये राग आग दह सदा, भेद नहीं पड़ा कि पाप राग आग है या पुनराप राग आग नहीं है, ऐसा
भेद नहीं पड़ा, भेद है ही नहीं। उन पाप में जो भेद करता है घोर संसार में ग्रहण, ऐसा कुंतकुन भगवान का वचन है। पुण्य पाप एक कोटि का दुखदायक बंध का कारण हे तत्व है, पाप है ही है न पुण्य उपाधेय है, ऐसा है नहीं। एक अर्थ द्वेषवाचक नहीं, उपेक्षावाचक, मेरा स्वभाव नहीं है, बस इतना ही। राग द्वेष करने की बात तो जिनागम है ही नहीं। आत्मा का हित करना की बात है, बाकी जानने का विषय तो बहुत है, हजारों आगम है। आयुष कम प्रवृत्ति ज्यादा, निवृत्ति कम बुद्धि कम, समझे? उसमें तो प्रयोजन हो तो अपना काम लेना चाहिए। प्रयोजन तो यही है,
सही उत्तर मिलेगा आज, इसलिए प्रश्न आ गया।
अच्छा,
श्रीमान जी, श्री रामचंद्र जी शायद सम्यक दृष्टि थे, जब शायद सम्यक दृष्टि थे तब उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां महीनों तक लड़ते थे, जिसमें लाखों पांच इंद्रिय जीवों को मौत के घाट उतारते थे। इतना बड़ा पाप तो साधारण मनुष्य भी नहीं कर सकता है, तब वो तो शायद सम्यक दृष्टि, तो शायद सम्यक का क्या महत्व रहा?
पहले तो रामचंद्र जी शायद सम्यक दृष्टि थे, एक बात, और पुरुषोत्तम पुरुष वो भाव में जिसका मोक्ष हो गया, कोई भाव में मोक्ष मार्ग में तो थे और मोक्ष हो गया, तो ऐसे रामचंद्र जी शायद सम्यक दृष्टि होने पर भी ऐसी लड़ाई क्यों किया कि जिसमें हजारों लाखों संगनी पची दिए, मनुष्य का घात हो गया, समझ गया? मनुष्य का घात हो गया, घात किया नहीं उसने, घात
हो गया,
तो उसने किया नहीं। कर्ता बुद्धि वाला को ऐसा लगता है कि रामचंद्र जी ने किया, मगर रामचंद्र जी ने जाना मगर किया नहीं है। आत्मा को जानते जानते वो जो होता है वो काम होता है उसको जानता है, उसने किया भी नहीं है। और दूसरी बात कि सचमुच तो उपादान रूप से तो किया नहीं, मगर निमित्त करता भी वो नहीं है, और ये निमित्त होता है उसमें वो तो पर का घात में पर निमित्त होता है, आत्मा और आत्मा का आश्रित हुआ परिणाम समझ रहा उसमें निमित्त होता नहीं है। इतनी बात है, थोड़ा स्थिरता का राग है, थोड़ा स्थिरता का राग है, चारित्र का दोष लगता है, श्रद्धा का दोष लगता नहीं है, क्योंकि उसमें कर्ता बुद्धि छूट गई, एक तो बुद्धि छूट गई है, वो अंदर की रमत है, और बाहर से देखो तो कर्ता लगता है रामचंद्र जी, समझे? मगर अंदर का जो तपास करे है तो तो ख्याल ना आ रहे, अंदर की बात है, अंदर की रमत है। भेद ज्ञानी को कर्ता भोक्ता की बात छूट गई है, होता है उसको जानता है। हाँ इतना सही है कि थोड़ा चरित्र का दोष है, स्वरूप में लीन नहीं रख सकता है, तो चरित्र का जरिक दोष थोड़ा आता है, अल्प दोष, वो अल्प दोष है, अनंत संसार का कारण नहीं है। एक बात, दूसरा, एक द्रव्य को बीजा द्रव्य कोई मार सकता नहीं है, नहीं जीवा नहीं सकता, नहीं वो मेन चीज जैन दर्शन की है। वो उसने ये मारा ने मेरे को वो मारता है, वो एक दूसरे को कोई मार सकता नहीं। उसका आयुष का क्षय होने का काल था, तब बाह्य निमित्त कैसा है ऐसा ज्ञान कराया है, बाकी किया पिया ऐसी अंदर की बात है। हाँ राग है, कितना कितना दोस्तों है, ज्ञानी को भी छूट नहीं है, थोड़ा दोस्तों लगता है, जानता है कि ये दोष है, मगर स्वरूप में लीन नहीं रहता है तो दोष आ जाता है। वो निर्जरा का हेतु है, क्या वो बात अलौकिक है, ज्ञानी की बात ज्ञानी जाने, सबको जाने, शाही समय दृष्टि है वो तो बराबर, तत्व भी मोक्ष होने वाला था बराबर, मगर थोड़ा राग ऐसा आता है, राग का चाह है, सांग है, जानता है वो लंबे टाइम टिकने वाला नहीं है। ऐसे शांतिनाथ भगवान, अरनाथ, कुंथुनाथ, चक्रवर्ती, कामदेव ने तीर्थंकर संजय, और चक्रवर्ती को तो छनु हजार रानी होती है, अरे चक्रवर्ती को छनु हजार रानी है ही नहीं, उसके पास तो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, रानी है उसका भी ज्ञान है, रानी मेरी है ऐसा अभिप्राय में है नहीं, नहीं। जल कमल वर्षी की होती है ज्ञान, ऐसी अंदर की बात है, बचाव बचाव नहीं करता है।
भोक्ता क्यों फिर उसको,
क्या
जब राग नहीं तो भोक्ता क्यों है,
राग नहीं तो भोक्ता,
जब राग नहीं है तो भोक्ता क्यों है।
राग आत्मदृष्टि वाला हो, राग होता है मगर भोक्ता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक तो बुद्धि नहीं है, आनंद का भोक्ता है न दुख का ज्ञाता है। क्या कहा, आनंद का तो भोक्ता है न दुख का ज्ञाता है, आनंद का भी भोक्ता न दुख का भी भोक्ता ऐसा है
नहीं।
अज्ञानी दुख का भोक्ता है, ज्ञानी आनंद का भोक्ता है, अन दुख का ज्ञाता रहता है, भोक्ता बनता है। रहस्यमय बात अंदर की बात है, वो सब सर्वज्ञ भगवान ने बताई, शास्त्र में भी सब है, शास्त्र में भी सब सब बात है, शास्त्र में खुलासा, चारों योग में सब में खुलासा है। प्रथम योग में तो ऐसी बात आती है कि कोई सहन न कर सके, ऐसी ऐसी बात भी आती है। देखो मार्गनंदी आचार्य हो गया समर्थ, समझे, तो ये कुमार ने उसको बताया कि जरा ख्याल करना उसको, लड़की को मैं अभी आता हूं, तो उसका पिताजी गया गांव, मैंने लड़की मारी ध्यान रखने के लिए, कच्चा हो मैंने माटी का, इसमें क्या हुआ कि आंधी आ गई एकदम बादल, एकदम घनघोर हो गया, तो वो पिताजी ने घर पर देखा था, अभी वर्षा टूट जाएगा, टूट पड़ेगा, उन्हें वो सब मेरा क्या किया, वासन खत्म, माटी पानी हो जाएगा, समझे, भगवान चिंता करते थे, भगवान रोने लगी, छोकरी बहुत रोड़ी, बहुत रोने लगी, तो मार्गनंदी आचार्य गुफा में बैठे थे, रुदन का आवाज आया, देखो बना कैसे बने, तो उसके पास आया कि क्या है, कि मेरे पिताजी मेरे को ध्यान रखने को बोल दिया, मगर मैं कैसे ध्यान रखूं, अभी तो वर्षा टूट पड़ेगा, इसलिए मैं रोती हूं, मेरी मेहनत सब नकामी होगा, अरे मेरा पिताजी मेरे को डांटेगा मारेगा, समझे, अच्छा ऐसा है, तो कोई करुणा आ गई, बनाव बनने वाला था, बनाव बनने वाला था, उसने पीछे हम फेरी तणवार, નિભાળો હોય ને આજુબાજુ, અને પછી વરસાદ અંદર ધાર તૂટો, એક ટીપા પાણી ક્યાં ઉપર નીકળ્યા, આજુબાજુ છે પાણી નીકળી ગયા. હું પિતાજી દોડ કરી દર આયા, દેખાતો હું ક્યાં ચમત્કાર. લડકી કે પૂછે ક્યાં હોય આ, ક્યાં હે કે એક યોગી મહારાજ ધર્માત્મા આયા થા તો ઉસને યે બચા દિયા કે અપના કામ. અભી મેરી પ્રતિજ્ઞા હૈ કે લગ્ન કરો તો ઉસકે સાથ, અરે વો તો બ્રહ્મચારી સાધુ ભાવલિંગી સંત આનંદ કા ભોગને વાળા. લડકી ને તો પ્રતિજ્ઞા કર લિયા, લગ્ન કરો તો ઉસકે સાથ, સમજે. તો પિતાજી વાત ગયા, ઉસકો વિનંતી ક્યા કે હમારી લડકી મર જાયગી, કે ક્યા હૈ ક્યા હૈ કે અભી તો તું બચ ગયા ને, કે નહીં એસા નહીં, ઉસકો પ્રતિજ્ઞા કર લિયા હૈ કે આપકે સાથ લગ્ન કરના હૈ. બોલો ચારિત્રવન ધુરંધર ભાવલિંગી
સંત નગરી મેં જાણે
તો બનાવ ક્યા બના, કે ઓ હોને વાલા થા હોને વાલા હોતા હૈ, નહીં હોને વાલા હો ગયા, એસા હૈ નહીં. કરતા બુદ્ધિ વાલો કો એસા લગતા હૈ, જ્ઞાતા બુદ્ધિ વાલો કો એસા લગતા હૈ કે હોનાર હોતા હૈ. આહા હોને જો હોતા હૈ ઉસકે સાથ લગ્ન ક્યા, સમજે. ઓર ઘડા બનાયા,
મટકે બનાને
મટકે બનાને લગા, ક્યોંકિ બનાના ચાહિયે, મગર બોર પીછે ને કમંડર માં રખા થા, સમજે. તો એસા હુઆ કોઈ સંઘ કે અંદર પ્રાયચિત કા પ્રશ્ન આયા, ઉનીકો કોઈ દોષ લગે અતિચાર, ભ્રષ્ટાચાર નહીં, કોઈ અતિચાર લગે તો દોષ હો તો પ્રાયચિત લે લેતા. તો એ પ્રાયચિત કા પાઠ કોઈ કિસી કો ખ્યાલ નહીં. તો આપણે આપસ મેં ચર્ચા હોઈ, એક મહાગ્રંથી આચાર્ય ઉસકે પાસ એ વિદ્યા હૈ પાઠ હૈ. તો કિસને કહા કે વો તો હો ગયા કુંભાર, કે ગરજ હો ગયા, સમય રત્ન તો રહે ગયા, નહીં ગયા કા ધ્યાન રખના, હા સમ્યક દર્શન કા ઘાતક કો પરિણામ નહીં હૈ, ચરિત્ર કા ઘાતક જરૂર હૈ. ચરિત્ર ગયા અને સમય દર્શન રહ્યા. તો આયા મુનિ કે એક હમરી વિનંતી હૈ કે પ્રાયચિત કા પાઠ નહીં જાનતા. અચ્છા આજ તક હમેરા નામ બસ વૈરાગ આ ગયા, બોર પીછી કમર લેકર ભાગો, તો છોકરી રોયા લગે અભી અમેરા રાગ પૂરા હો ગયા. દો વિભાગ અલગ હૈ, વો દો વિભાગ જીવ કો ખ્યાલ મેં નહીં આતા હૈ, શ્રદ્ધા કા દોષ, શ્રદ્ધા કા ગુણ ઓર ચરિત્ર કા દોષ, સાથ મેં રહેતા હૈ, સાથ મેં રહેતા હૈ, એક તો નહીં હોતા હૈ, સાથ સાથ મેં શ્રદ્ધા કા ગુણ ઓર ચરિત્ર કા દોષ સાથ મેં રહેતા હૈ. દો ગુણ અલગ હૈ, દો ગુણ કી યોગ્યતા અલગ હૈ, દો ગુણ કા નિમિત્ત ભી અલગ અલગ હૈ. એક દફે ગુરુદેવ બેઠે થે, અને એક ભાઈ આયા કે આપ પુણ્ય નહીં કરને કા કહેતે હૈ તો સબ પાપ મેં ચલે જાયેગા. મેં બેઠા થા સાથ પાસ મેં, મેં ઉસકો ભાઈ કો કહા કે પુણ્ય સે ધર્મ માનના છોડા થા હૈ, પુણ્ય છોડને કે બાદ ઇધર હૈ નહીં, પુણ્ય સે ધર્મ માનના કી માન્યતા છોડા થા હૈ, વિપરીત શ્રદ્ધા કા ત્યાગ કરાતા હૈ. પુણ્ય છોડો એસા ઉપદેશ નહીં, કરતા નહીં હૈ તો છોડે કોણ, કરતા નહીં હૈ તો છોડતા કોણ હૈ, જાનતા હૈ, આતા હૈ તો જાનતા હૈ, જાતા હૈ તો જાનતા હૈ, અને આત્મા ટિકતા હૈ ઉસકો ભી જાનતા હૈ, ટિકને વાલો કો જાનતા હૈ, કોઈ આવે ને કોઈ જાય ઉસકો ભી જાનતા હૈ, આત્મા મેં રહેતા હૈ. જ્ઞાની એસી વાત હૈ, કોઈ જૈન દર્શન મેં છૂટ નહીં હૈ, પુણ્ય છોડકર પાપ કા ઉપદેશ તો હૈ નહીં, પુણ્ય સે ધર્મ માનના છોડ દો. પુણ્ય તો સાધક કો ભી મુનિરાજ કો પાંચ મહાવ્રતતા હૈ, ઓ પુણ્ય તત્વ હૈ, ઓ પુણ્ય તત્વ હૈ કે નહીં, મગર ઓ પાંચ મહાવ્રત બંધ કા કારણ એસા જાનતા હૈ, ઓ સંવર્જના કા કારણ નહીં એસા જાનતા હૈ.
તીર્થંકર કો ક્યો નહીં આતા પાંચમો ગુણસ્થાન, તીર્થંકર કો પાંચમો ગુણસ્થાન ક્યો નહીં આતા,
તીર્થંકર કો પાંચમા ગુણસ્થાન આ જાતા હૈ, ઇસમે ક્યા હૈ,
સીધા
નહીં ચોથા પહેલા ચોથા આતા હૈ, બાદ મેં
પાંચમા, પાંચમી મેં નહીં રહેતે, नहीं रहती,
आठ वर्ष के बाद महात्मा,
आठ वर्ष के बाद महात्मा हो जाता
है।
आठ वर्ष तक तो चौथा रहता है, अभी रहता सम्यक दृष्टि।
तीर्थंकर की तो कह रहे हैं,
तीर्थंकर आठ में आठ वर्ष हुआ, आठ वर्ष के बाद पंचम स्थान आ जाता है।
उन्होंने लिखा है पांच चौथे में आकर के जंप मारते हैं, छठे में सीधे निकल जाते हैं, महान पुरुषों को मानता है, पांचवे में नहीं आता है।
वो पांचवे प्रस्थान का समझो पाणी जी,
ये तो किसी की किसी को ऐसा होता है।
तीर्थंकर के बारे में सिर्फ लिखा और किसी को
तीर्थंकर के कोई जीव सामान्य जीव
ये साधन
चौथा था, चौथा में से टपकर पांच छठा सातवा आ सकता है, उसमें बाधा नहीं है। बाकी तीर्थंकर को आठवें वर्ष के बाद पंचम स्थान आता है, ऐसा ब्रह्मा जी उसमें लिखा है, मान लेना।
परम कृपालु श्री सद्गुरुदेव जय हो।